से हो सकता है। अच्छा हाँ, कुरैश इनका नाम कहाँ से पड़ा? जी शाबाश, बहर या नजर जो थे उनका नाम, उनका लकब जो था वो कुरैश था, क्योंकि उनकी औलाद में से हैं। तो अब आप जब याद कर लेंगे ना पाम पे हैंड के, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे वो हैं। उनसे चल रहा है आगे ये नाम कुरैश, अदरवाइज कुरैश नाम को तो फिर पहले से कोई नाम नहीं चला आ रहा था। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि ये जो हम कहते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश ट्राइब से थे, तो वो कैसे कुरैश ट्राइब कहाँ, इस फैमिली ट्री में तो कहीं नहीं नजर आ रहा। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिर आगे उनके नाम के आगे। जी जी जी, कुरैश का माना मैं आपको देख के ला के बताऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप उर्वा और हकीम जो था ना वो भी इन्हीं का नाम था, हुसैन का। अच्छा, आप आगे इंशाल्लाह ताला हम पढ़ते हैं आज का। अब आप निकालें अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का और ये सब, इतना टाइम तो इसमें ही गुजर गया, आज तो ये हो गया। नेक्स्ट टाइम आप लोग बिल्कुल ब्रीफ पॉइंट्स लिख के लेकर आइएगा ताकि ज्यादा टाइम ना जाए, और मैं जो भी आपसे पूछूं आप बस मुझे एक लाइन में बताएंगे कि मैंने क्या सीखा, कि हजरत हाजरा से मैंने तवक्कुल सीखा फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो लंबी लंबी बातें अगर हम करेंगे तो पूरी क्लास फिर नहीं कर सकेगी और हमारा टाइम जाया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा था खानदान, आज पढ़ना था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सेलफोन ऑफ कर दें और जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे हम। खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान आपके परदादा हाशिम की निस्बत से हाशमी खानदान कहलाता था। अब आपको पता चला कि कुरैश कहाँ से नाम आया और हाशिम कहाँ से, हाशमी कहाँ से नाम आया। क्या तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब हमें ये पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी खानदान से थे, बनू हाशिम से थे, और साथ ये भी कहा जाता है कुरैश से थे, तो दोनों में क्या फर्क है? तो ये फर्क है, समझ आ गई ना? अब आपको ये पता है ना कि कहाँ पे हाशिम नाम आता है और कहाँ पे सहर का नाम आता है। ठीक है, तो कुरैश कहाँ से नाम पड़ा और हाशमी कहाँ से नाम पड़ा। इनको कुसई के मनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया था कि कुसई के दो बेटे जो थे अब्दुद्दार और अब्दे मनाफ, उनमें से किसको कुसई ने दे दिया था कि सारा कुछ आपका? अब्दुद्दार। शाबाश। अब देखिए, आप पीछे बैकग्राउंड आपको जब तक याद नहीं होगी ना अगले लेसन में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि लॉस ही हो जाएंगे क्या था। अब्दुद्दार को दे दिया था, तो अब्दे मनाफ के पास कैसे आया फिर? क्यों नहीं आ रहा? जी शाबाश शाबाश। तो फिर उनकी लड़ाई इस हद तक नहीं पहुंची कि कोई जंग होती, लेकिन जब उनका आपस में झगड़ा हुआ तो यही फैसला हुआ दोनों का, इन दोनों के बच्चों का, कि हम ऐसा करते हैं डिवाइड कर लेते हैं इन कामों को। क्योंकि पहले तो सारे काम को सही करते थे ना, अब ये इनके दो बच्चे हैं जिनके बच्चों के अंदर लड़ाई जा रही है, क्योंकि क्वालिटी ज्यादा अब्दे मनाफ में थी लेकिन बाप ने अब्दुद्दार को दे दिया। देखा आपने, जब इंसान बच्चों में भी कहीं ना इंसाफी कर देता है तो आगे उनकी औलादों में कहीं ना कहीं झगड़े पैदा हो जाते हैं। तो अब जब झगड़े पैदा हुए तो फिर रफादा और शिकाया का काम, यानी ये मेजबानी का काम हाजियों की और ये पानी पिलाने का काम जो था, ये अब्दे मुनाफ के बच्चों में आया। अब अब्दे मुनाफ के जो बच्चे थे वो ये सारे ही थे, हाशिम भी थे, मुत्तलिब भी थे। तो अब इनका कैसे, चार उनके बेटे जिनका नाम ज्यादा जिक्र आता है, अब उन्होंने कुरा डाला। ठीक है, उन्होंने कुरा डाला कि हमने से कौन होगा जो इसका इंचार्ज होगा, चारों तो इंचार्ज नहीं बन सकते। तो हाशिम का नाम निकला था अब्दे मुनाफ के बेटों में, फिर बेटों ने सबने कुरा डाला तो हाशिम का नाम निकला। इसलिए हाशिम वॉज रिस्पॉन्सिबल, ये जो होस्टिंग थी हाजियों की इसके लिए हाशिम रिस्पॉन्सिबल थे। अच्छा, उनको कुसई के मुनासिब में से हाजियों की मेजबानी का मनसब हासिल हुआ जो उनके बाद उनके भाई मुत्तलिब की तरफ मुंतकिल हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इनके, यानी ये अब्दे मनाफ है ना, तो इनके बेटे हैं, उनमें से हाशिम के पास, अब
ये खोल देंगे आप फ्लाइट जो नंबर टू फैमिली चाहिए था, और एक बेटे है मुत्तलिब। अब किसको मिला मेजबानी का जो इंचार्ज कौन बने कोरा के बाद? हाशिम, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ऐसे हुआ कि हाशिम की जब डेथ हुई तो मुत्तलिब के पास मेजबानी चली गई,
इसलिए हाशिम का बच्चा मक्के में नहीं।
हाँ, अभी हम उसके ऊपर आते हैं। फैमिली ट्री नंबर टू निकाल दें। इसमें आप देखिए ना कि हाशिम के पास पहले थी और उसके बाद फिर मुत्तलिब के पास चली गई, मुत्तलिब उन्हीं के भाई थे। मुत्तलिब के बाद फिर हाशिम की औलाद को ये मनसब हासिल हुआ और इस्लाम की आमद तक इन्हीं के हाथ में रहा। अब उसके बाद जब मुत्तलिब के पास गई तो उसके बाद अगेन वापस हाशिम की औलाद में आ गई। कुछ समझ आ रही है या कंफ्यूजन है? अब्दे मनाफ के जो बेटे हैं, कुरा डाला गया, अब अब्दे मनाफ के बच्चों को मिल तो गया, अब्दुद्दार के बच्चे थे और अब्दे मनाफ के बच्चे थे, दो भाई हैं। अब कुरा डाला गया इसलिए क्योंकि अब्दे मनाफ के बच्चों के पास जो दो चीजें आई थी, हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाना, देखिये उनके लिए कितने शर्फ की बात थी, वो इसको बहुत बड़ी नेकी समझते थे और इसी वजह से वो इतने पुअर भी हो गए थे कि गुर्बत उनके अंदर ऐसे नहीं थी, माल बहुत है लेकिन वो इतना बेदरेर स्पेंड करते थे। हाजियों को खाना खिलाना कोई आसान है? आज भी कोई चाहे तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वो कहते थे कि नहीं खाना खिलाएं और पानी ऐसा सादा पानी नहीं, खजूर किशमिश डाल के उसमें उससे पिलाते थे। तो सुभान अल्लाह कितनी ज्यादा, यानी खुशी से खिलाना वो उनके अंदर थी ये चीज। तो फिर मुत्तलिब के बाद पहले हाशिम के पास थी, फिर भाई के पास चली गई मुत्तलिब, यहाँ पे लिखा है ना हाशिम, फिर उनके भाई मुत्तलिब के पास। ये देखें आप फैमिली ट्री में दो और नाम है, अब्दे शम्स और नौफल, इनके नामों को अभी हम आप छोड़ दें, ठीक है। हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। अब आप लोग बुक्स में कोशिश करें कि अगर आप पेंसिल से बुक्स में ही साथ साथ थोड़ी थोड़ी बात लिख लें, और जो मैं वर्ड्स आपको बताऊं जो मुश्किल है उनको भी आप ऊपर अंडरलाइन करके उनका मीनिंग लिखें। हाशिम अपने जमाने के सबसे अजीम इंसान शुमार होते थे। क्यों अजीम इंसान शुमार होते थे? ये काम करने की वजह से। इन्हें वादी बत्था का सरदार कहा जाता था। वो रोटी तोड़कर गोश्त और शोरबे में भिगोते और लोगों के खाने के लिए छोड़ देते। रोटी को तोड़ के, उस जमाने में ये एक डिश होती थी, रोटी तोड़ तोड़ के गोश्त में शोरबे में भिगो के और लोगों को खिलाना। क्योंकि अरबी में इस तरह किसी चीज के तोड़ने को हशमा और तोड़ने वाले को हाशिम कहते हैं, जो तोड़े उसको हाशिम कहते हैं, इसलिए इनका नाम हाशिम पड़ गया था। क्या तो हाशिम का मतलब क्या? अब आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, क्या मतलब है? रोटी तोड़ने वाला। इसलिए वरना उनका असल नाम अमर था, इसको उमरू नहीं कहेंगे आप, उमर के बाद जब भी वाव लिखा होगा तो उसको क्या कहेंगे? अमर, ठीक है। कुरैश तिजारत पेशा थे। हाशिम ने उनके लिए जाड़े में, जाड़ा क्या होता है? सर्दियां, विंटर में यमन, और गर्मी में शाम का तिजारती सफर मुनज्जम किया। अब मैं आपको बताया था शाम का एरिया कौन कौन से, फलस्तीन, जॉर्डन, सीरिया जो अब का है वो सब उसको शाम कहते थे, ठीक है। तो शाम वॉज नॉट स्पेसिफिक वन कंट्री के सीरिया को हम कहें, और उस तरफ तो आपको पता है ना सर्दी होती है और वो नॉर्थ में है तो इसलिए गर्मियों में उधर को जाया करते थे। यमन साउथ की तरफ है, ठीक है, तो वहां पे सर्दी में जाया करते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में भी फरमाया ना, लीला के कुरैश के उसमें। अच्छा आप लोगों को बिल्कुल नहीं आवाज आ रही थी, तो हम बंद कर दें फिर ये फोन। अच्छा चले, इस सफर का जिक्र कुरान मजीद की सूरह कुरैश में अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े एहसान के तौर पे किया गया। अच्छा अल्लाह ताला ने देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से वो काम लिया जो इज्जत और शर्फ वाला था, जिसकी वजह से उनको हर एक बहुत रिस्पेक्ट देता था। हाशिम एक बार तिजारत के लिए शाम जाते हुए यसरब, यसरब मदीना का पुराना नाम है, यसरब से गुजरे तो वहां बनु अदी बिन नजार की एक खातून सलमा बिनते अमर से शादी कर ली। अब ये जा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या है, मदीना रुके हैं और वहां पे शादी कर ली। शादियां भी उस वक्त बड़ी आसान होती थी और फोन या फैक्स या वो तो होता नहीं था कि घर वालों को इतला दें भाई मैंने शादी कर ली, ठीक है। तो अब शादी कर ली रास्ते में, और किन किन खातून से शादी की थी हाशिम ने? सलमा बिनते अमर, ठीक है, और कुछ अरसा ठहर कर मुल्के शाम चले गए। अब शादी किए, कुछ हफ्ता स्टे किया और फिर जहां जा रहे थे अपनी ट्रेडिंग के लिए, मुल्के शाम वहां चले गए। अब पीछे उनको नहीं पता मक्का में कि क्या हो रहा है, इन्होंने शादी किया या क्या, और वहीं सरजमीन फलस्तीन के मशहूर शहर गजा में इंतकाल कर गए, वहां पे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब इनकी रवानगी के बाद सलमा हामिला थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी। अब पीछे वालों को, उनके खानदान को, हाशिम के खानदान को कुछ भी ये इल्म नहीं है कि वहां पे उन्होंने शादी किया या वो एक्सपेक्ट कर रही है या क्या है, क्योंकि उनकी तो वहां पे डेथ हो गई। बाद में बच्चा पैदा हुआ जिसके सर के बालों में सफेदी थी, इसलिए उसका नाम शैबा रख दिया गया। जिसको ग्रे हेयर बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो उसका नाम शैबा रख दिया गया। ये बच्चा मदीना में परवरिश पाता रहा, अपनी माँ के पास ही रहा, और माँ भी जो थी ना वो बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत वेल टू डू फैमिली से ताल्लुक रखती थी, तो बड़े मतलब बड़ी इनकी अच्छी परवरिश वहां पे हो रही थी। लेकिन मक्का में हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों का इसको इसका इल्म ना था। जाहिर है मैंने आपको बताया कि उनकी फैमिली को, हाशिम की फैमिली को ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है। अच्छा, इससे पहले एक और भी बच्चा था जिसकी माँ उसको लेकर गई थी और उनकी परवरिश कहीं और हुई थी, वो कौन थे? वो सही बिन किलाब, बिल्कुल। और दूसरे, अब ये भी हाशिम भी अब इनकी माँ के पास हैं ये, और कहाँ पे रह रहे हैं? मदीना में। अल्लाह ताला ने उस वक्त मदीना में, देखिये सुभान अल्लाह, इनको परवरिश कर की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं मदीना हिजरत करके जाना था। आपको पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए थे तो ये लोग इतने ज्यादा खुश थे, इनकी बच्चियां जो थी वो आगे बढ़ के गा रही थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरह से ननियाल लगा या ददियाल कह सकते हैं जो भी, क्योंकि ये कौन थे ये अभी पता चलता है। ये बच्चा मदीना में परवरिश पाता रहा, लेकिन मक्का में हाशिम के भाइयों और खानदान के दूसरे लोगों को इसका इल्म ना था। 8 बरस बाद मुत्तलिब को इसका पता चला, यानी जब ये 8 साल के हो गए होंगे तो इनके ये जो बच्चा था इसके चच्चा को पता चला। अब यहाँ पे फैमिली ट्री में देखे ना, हाशिम है, हाशिम तो फौत हो गए, इनके जो भाई मुत्तलिब है, अब इनको पता चला कि ओ मेरा तो एक भतीजा है मदीना में, मेरे भाई ने वहां पे शादी की थी और एक बच्चा पैदा हुआ। जब अच्छा वो मदीना जाकर उसको अपने साथ ले आए, दरअसल ये वहां पे गए और इन्होंने ये सलमा बिनते अमर से कहा कि मैं बच्चा लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको रोकती तो नहीं हूँ, लेकिन ये बात है कि आप बच्चे से पूछ लें, अगर ये जाना चाहता है तो आप ले जाएं। तो अब बच्चे को भी पता था कि मेरे वालिद का खानदान सारा, मेरे चचा वगैरह सब वहां पे हैं, और बच्चे की परवरिश बहुत, मैंने आपको बताया ये रिच फैमिली थी, तो बड़ी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हो रही थी, जबकि उधर उनकी फैमिली जो थी, आपको पता है हाशिम की फैमिली, मैंने अभी आपको बताया कि वो किस वजह से गुर्बत में थे, हाजियों की खिदमत करने की वजह से। यानी कितना सोचे जज्बा होना चाहिए इस चीज के लिए कि इंसान अपनी जरूरत कुर्बान करके कि नहीं इनको खिलाओ पिलाओ, वरना इंसान, अब हम इस दौर में सोचे तो हम कहते पहले अपने लिए रखो, कोई मेहमान भी आ जाए तो हम कहेंगे तो जो सबसे छोटी चीज है वो निकाल के इसको दो, ये चीज जो स्पेशल है ये हमने अपने लिए बना के रखी। वो क्या करते थे कि नहीं, हम चाहे गरीब रहें, हमारे बच्चे गरीब रहें, लेकिन हाजियों की हम खूब खिदमत करें। अल्लाह ताला ने ऐसे ही इनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। मैंने आपको बताया कि जो इनकी खूबियां थी वो बहुत स्ट्रांग थी। तो उन्होंने जब कहा ये, तो इन्होंने बच्चे से पूछा, और बच्चे को हालांकि ये पता था कि वहां पे गरीब है ये और यहाँ पे मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जाने को तैयार हूँ। अच्छा, आप ये लेके अपने भतीजे को चल पड़े। भतीजा कौन है? यतीम भतीजा जिसका बाप फौत हो चुका। इनका बाप कौन था? बच्चे, हाँ आशिम। ठीक है, आपको सब मेरे साथ बिल्कुल रहना है, फोकस। अच्छा, अभी अभी इस तरफ आते हैं, अभी इसको छोड़ दें। जब मक्का में दाखिल हुए तो लोगों ने समझा ये उनका गुलाम है। अच्छा, उस वक्त क्या करते थे? उस जमाने में लोग प्यारे प्यारे बच्चे, खूबसूरत बच्चों को भी गुलामी के लिए खरीद लेते थे। तो अब इन्होंने अपने साथ उनको ऊंट पे बिठाया था। अब लोग ना उस जमाने में बहुत इस पे भी फखर करते थे कि हमारे पास इतना अच्छा गुलाम है और हमारा गुलाम इतना स्किल्ड है, इतना ये इसके अंदर क्वालिटीज है। तो ये खूबसूरत बच्चा देखा तो उन्होंने कहा कोई गुलाम, ये मुत्तलिब कोई गुलाम खरीद के लेकर आया। तब उन्होंने कहना शुरू कर दिया अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब। ये अब्द का मतलब क्या? गुलाम, मुत्तलिब का गुलाम। हालांकि उनका नाम ये नहीं था, नाम क्या था? शैबा। और देखिये अब अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे और बिल आखिर वो इसी नाम से मशहूर हो गए। देखिये جی جو لے کر آئے وہ متلف ہے نا, متلف نے ہی اپنے ساتھ بٹھایا تھا اونٹ پہ. تو لوگ ہاں بچے کا نام عبد المطلب ہو گیا, متلف کا غلام, متلف لے کر آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں لوگوں نے دیکھا اونٹ پہ آ رہے ہیں دونوں سوار, ساتھ بچہ بیٹھا, لوگوں نے یہ تھوڑی پوچھا بھی آج کا بچے کا نام کیا, متلف کا غلام عبد المطلب, متلف جو لا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں, متلف کے بیٹے نہیں. بیٹے کس کے ہیں؟
ہاشم
کے. اور لیکن نام کیوں پڑ گیا؟ ان کے ساتھ اونٹ پہ سوار تھے اور جب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے. سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے دیکھیں, عبد المطلب بہت خوبصورت اور عظیم تھے. ان کے دور میں ان کا ہم مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت کے ذمہ دار تھے. ان کا کیا ہوا؟ کیونکہ ان کے والد جو ظاہر سردار تھے, تو اب یہ بھی قریش کے سردار اور مکہ کے قافلہ تجارت جو تھا اس کے ذمہ دار تھے. وہ جود و سخا میں اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. اب آگے دیکھیں بیٹا بھی ویسے ہی, اتنی زیادہ سخاوت تھی کہ ان کا نام ہی فیاض پڑ گیا تھا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبد المطلب کی. ان کے دسترخوان کا پسخوردہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لیفٹ اوور, ٹھیک ہے, مسکینوں, جانوروں اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا. اور اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. سبحان اللہ, اللہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا کر دے کہ ہم کھلانے والے بنے اور ہمیں یہ نہ پرواہ ہو کہ کون کھا رہا ہے, بس کھاؤ. تو یہ اتنے زیادہ زبردست ان کی یہ کوالٹی تھی. اب یہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے, ٹھیک ہے. جودو صاحب مطلب سخاوت, بہت زیادہ جیونگ, بہت بڑا دل ہونا کسی کا. اچھا, انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. اب یہ کیسے ہوا اس کی سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کنویں کو بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ دیا تھا, یعنی بالکل انہوں نے اس کو بری کر دیا تھا. کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کہاں ہے. اور کتنے عرصے سے یہ بند تھا؟ 300 ایئر سے, 300 سال. آپ کو پتا ہے ہسٹری میں کہ زمزم تھا ہی نہیں. اب کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو یہ شرف دینا تھا, تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ کاش یہ شرف ہمیں ملے, کہ زمزم ہمیں کسی طرح مل جائے. تو ایک دفعہ انہوں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو, پھر ان کو کہا گیا برا کو کھودو. تو خواب میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ. پھر خواب آیا برا کو کھودو, پھر خواب آیا زمزم کو کھودو. تو سب پتا چلا, اچھا زمزم کو کھودو لیکن کہاں کھودو. اب خواب میں ان کو بتایا گیا, خواب میں کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے کہ کھودو زمزم درمیان خون اور گوبر کے, اور جہاں پہ غراب آسم, آسم ایک کبے کو کہتے ہیں جس کی پر سفید ہوتا ہے, وہ خاص ایک نسل کا کوا ہوتا ہے, جہاں وہ ٹھونگے مارتا ہے وہاں پہ, اور جہاں چونٹیوں کی بستی ہے. اب یہ اتنا ایسا تھا کہ خواب کے کچھ سمجھ نہیں ان کو آئی کہ کدھر کھود دیں. تو اچھا اب وہ ایسے وقت میں وہ اٹھے اور سارے مکہ میں جا کے دیکھا, کہیں پہ بھی ایسی کوئی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پہ گوبر ہے, خون ہے, چونٹیوں کی بستی. بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی اس میں تھے یہ کنفیوژن میں کہ کیا ہو رہا. دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ سعادت مل جائے. تو ایک دن دیکھتے ہیں کہ حرم کے پاس ایک آدمی آیا ایک بچڑا لے کر, اور اس نے بچڑا وہاں پہ ذبح کیا. ذبح کیا تو ایک طرف اس کا گوبر پڑا ہوا تھا, ایک طرف خون تھا. اور وہیں دیکھا کہ غرابا ایک کوا آیا اور اس نے ٹھونگے مارنے شروع کر دیے, اور دیکھا کہ چونٹیوں کی ایک بستی ہے, چونٹیوں کی لائن لگی ہے. سمجھ گئے کہ اچھا وہاں پہ نشان لگایا, یہاں پہ نشان لگایا, یہاں پہ نشان لگایا, اور اب کھودنے کا کام شروع کیا. تو ان کا اس وقت ایک ہی بیٹا تھا. عبد المطلب کے دیکھیں کافی بیٹے ہیں نا, ان میں ایک ہی ان کا بیٹا اس وقت تھا حارث, اس وقت اور کوئی بیٹا نہیں تھا ان کا. تو وہ اب ایک بیٹے کو لے کے جب انہوں نے کام شروع کیا, اب قریش بھی آ گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم زمزم کھود رہے ہیں, اور تو انہوں نے کہا اس میں تو ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, تمہارا تو حصہ نہیں ہو سکتا. خیر زمزم निकल आया, पानी निकल आया, अब ये झगड़ा पड़ गया कि वो भी इसमें शामिल होना चाहते थे और ये उनको शामिल नहीं करना चाहते थे कि हमने ढूंढा है तो ये हमारा है। अब उस जमाने में एक बात याद रखें कि लोग जैसे आज के साथ तो नहीं ये एग्जांपल दे सकते, अभी भी जहालत जिन इलाकों में है वहां पे ये होता है कि जरा जरा सी बात के ऊपर काहिन जो फॉर्चून टेलर्स होते हैं इनके पास लोग जाते हैं। तो उस जमाने में भी हर कबीले के कोई काहिन या काहिना होती थी, तो इन लोगों ने कहा कि चले हम एक काहिना के पास जाते हैं, बहुत बड़ी काहिना है, तो उसके पास हम जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इस झगड़े का फैसला करो। ये इसमें बुक में नहीं, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो जब ये वहां पे उसको पूछने के लिए गए उस जगह, कहा जाता था कि वो मदीना की तरफ थी, तो मदीना पहुंचे तो पता चला वो आगे खैबर गई है और कितनी दूर दूर उस वक्त डिस्टेंसेस होते थे। खैर ये चलते गए उसको ढूंढने के लिए, उसके पीछे गए और एक जगह पे ऐसा हो गया था कि इनका पानी खत्म हो गया बिल्कुल। तो जहां पे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना ऊंट बिठाया, वहां से जब ऊंट उठा तो नीचे से पानी